भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री ठाकुर जी की महती कृपा से भगवती भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर श्री गंगा जी का दर्शन करते हुए संतों की मंडली के मध्य भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ कथन लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रातःकालीन वेला में विशेष रूप से चतुश्लोकी भागवत की चर्चा की गई, जो भागवत का मूल सिद्धांत है, जिनके ऊपर समग्र ग्रंथ की रचना हुई है, उस चतुश्लोकी भागवत की चर्चा प्रातःकाल की गई। विदुर जी का प्रसंग वर्णन किया गया। भगवान की आज्ञा से विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा के क्रम में ही प्रभासक क्षेत्र में उनका उद्धव जी से मिलन हुआ। यदुवंश के क्षय का समाचार प्राप्त कर आपने अपने ज्ञान के द्वारा उस शोक का शमन किया। ज्ञानेना शमयत क्षता, ज्ञान के द्वारा अपने शोक का शमन किया। ज्ञान क्या है? ये सब संसार नाशवान है, भगवान की रची हुई सृष्टि है, ये भगवान का ही खेल है। यह विचार करके आपने भगवत संकल्प मानकर उसे स्वीकार कर लिया। संवाद हुआ है, उद्धव जी ने कहा, विदुर जी हम यदुवंशियों की कुशल क्या सुनाएं? अब तो कुशलता तो चली गई, कुशलता तो श्री कृष्ण के साथ थी, वह चली गई। दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि ये संबसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। उद्धव जी कह रहे हैं ये संसार अभागा है, यदुवंशी और अधिक अभागे हैं, जो श्री कृष्ण के साथ ही निवास करते थे लेकिन भगवान को वे पहचान नहीं सके। उदाहरण दे रहे हैं, मीनाह उडुपम इव, उडुपम करते चंद्रमसम, जैसे मछलियां चंद्रमा को नहीं जान पाती, ऐसे ही धरती के लोग भगवान को पहचान नहीं सकते। चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा जी में पड़ता है तो मछलियां परस्पर विचार करती हैं कि ये चमकता हुआ कौन सा प्राणी है जल के भीतर। विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंचती हैं, जैसे हम जल के जीव हैं ऐसी ये भी चमकता हुआ कोई जल का प्राणी है। तो क्या मछलियों के यह सोचने से कि चंद्रमा जलचर है, क्या आकाशचारी चंद्रमा जल का प्राणी बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन वो बेचारी मछलियों का अज्ञान है, वे चंद्रमा को जलचर मान लेती है। ऐसे ही संसार सागर है, इसमें विषय रूपी जल भरा हुआ है और विषय से प्रेम करने वाली जीव रूपी मछलियां इसमें विहार कर रही हैं। जब भगवान का आविर्भाव इस जगत में होता है तो ये जीव भगवान को भगवान नहीं मान पाते। ये कहते जैसे हम जल के प्राणी हैं ऐसे ही ये भी कोई जल, ये भी सृष्टि का कोई प्राणी है। तो दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जिनको अपनी बुद्धि का अजीर्ण हो चुका है, ऐसे लोग आज भी राम कृष्ण को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं। कोई कहता वे श्रेष्ठ मानव थे, कोई कहता वे महामानव थे, भगवान थे, इस बात को भी नहीं स्वीकार कर पाते। ये संबसंतो न विदुर हरिम मीना इगोडुपम। जो बात भगवान की है वही बात भगवान के भेजे हुए भगवत स्वरूप महात्माओं की है। महात्मा जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम लोग उनको अपने जैसा ही मरण धर्मा मान करके, अपने जैसा ही सामान्य जीव मान करके व्यवहार करते हैं। यह नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई विशिष्ट भगवान की विभूति इस पृथ्वी पर आई है। हम इस विभूति का आदर करके, इन्हें अपने आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करके हम अपना कल्याण कर लें, ये नहीं समझ पाते। सोचते हैं बस ये है कि ये थोड़े से अच्छे हैं, और क्या है, जैसे हम दो हाथ पैर वाले हैं ऐसे ही तो ये हैं, जैसे हम हैं वैसे ये हैं, भेद क्या है, खाना पीना सोना एक जैसा ही है, भेद क्या है। लेकिन ऐसा है नहीं। आज कोई झूठी भी खबर दे दे कि तुलसीदास जी महाराज अमुक जगह प्रकट हो गए हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, तो भले ही आज विश्वास की कमी और श्रद्धा की कमी आ गई है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं एक घंटे में कम से कम 1,00,000 आदमी तो इकट्ठा हो जाए। लेकिन उनके जीवन के काल में, तुलसीदास जी के चरित्र में ऐसा आता है कि उनके जीवन काल में कितने लोग उनकी महिमा स्वीकार कर पाए, उनके जीवन काल में उनकी महिमा को लोग स्वीकार नहीं करते। आज उनकी महिमा बढ़ गई, लेकिन संत के जीवन काल में यदि उसकी महिमा को स्वीकार कर लिया जाए, भगवान के अवतार काल में भगवान की महिमा को स्वीकार कर लिया जाए तो परिपूर्ण लाभ। पांडवों ने भगवान की महिमा को स्वीकार कर लिया, उनको पूरा लाभ मिलेगा। यदुवंशियों की बात कहते, उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाया, ये लाभ से वंचित थे। साथ रहते थे फिर भी लाभ नहीं ले सके। इसलिए साथ रहने से हम लाभ ले लें ये भी संभव नहीं है। साथ रहने के बाद भी महिमा में विश्वास हो, उनकी प्रत्येक क्रिया हमको सामान्य न दिखाई पड़े, अति असामान्य दिखाई पड़े, और उसकी गंभीरता को हम समझ सकें और उनके रुख के अनुरूप व्यवहार कर सकें, जब ऐसी पद्धति से जब हम उन महापुरुषों का सेवन करेंगे तो उनके द्वारा प्राप्त लाभ अवश्य ही हमें मिलेगा और हम कृतार्थ हो जाएंगे। बड़ा सुंदर संवाद हुआ और अंत में विदुर जी से उद्धव जी ने विदाई ले ली है। जो विदुर जी अपने दोनों वंशों के विनाश का समाचार सुनकर भी दुखित नहीं हुए, कुरुवंश का क्षय और यदुवंश का क्षय, दोनों का क्षय सुनने के बाद भी जो दुखी नहीं हुए, वे विदुर जी उद्धव जी के जाने पर रोदक प्रेम विह्वला है, प्रेम से व्याकुल होकर रोने लग गए। इसका तात्पर्य है कि संसार के न मिलने का सुख होता है ज्ञानियों को, प्रेमियों को, भक्तों को, और न उसके बिछुड़ने का दुख होता है। संसार के मिलने का सुख भगवान के भक्त को नहीं होता, ज्ञानी को भी नहीं होता, और बिछुड़ जाए तो उसका दुख नहीं होता, क्योंकि वह जानता है ये तो बिछुड़ने के लिए ही मिला था, बिछुड़ गया तो क्या हुआ, हमारा क्या गया, ये तो बिछुड़ना था ही, इस बात को वह जानता है, इसलिए उसके चित्त में दुख नहीं होता, प्राप्ति में सुख नहीं होता और चले जाने पर दुख नहीं होता। लेकिन विदुर जी को उद्धव जी की प्राप्ति से अपार सुख हुआ और उनके चले जाने पर अपार कष्ट हुआ, रोरोदक प्रेम विह्वला, प्रेम विह्वल होकर के वे रोने लग गए। इसका तात्पर्य है कि भले ही संसार के आने जाने, बिछुड़ने का, पाने का सुख दुख आदि भक्त प्रेमी को न हो, लेकिन भगवान के भक्त से जब मिलन होता है, संत से मिलन होता है, तो अपूर्व सुख होता है, क्योंकि इसमें भगवान की चर्चा होती है, भगवान का सुख प्राप्त होता है, सत्संग का सुख प्राप्त होता है। संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत से मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। और दुख भी सबसे बड़ा यही है, वे बिछुड़ जाएं, ये सबसे बड़ा दुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले ही मिलत एक दुख दारुण दे। भगवान के भक्त बिछोड़ते हैं तो प्राण हर ले, प्राणों का अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं मिलेगा तो व्याकुलता चित्त में होती है, और दुष्ट जब मिलता है तो भारी दुख देता है। आज उद्धव जी महाराज बिछुड़े हैं तो विदुर जी प्रेम विह्वला रोरोद प्रेम से व्याकुल होकर रोने लगे, और भगवान का स्मरण करके रोने लगे। क्यों? क्योंकि आत्मना मनसेक्षितम, भगवान ने परम धाम जाते समय हमारी याद की, यह बात सुन करके आप और अधिक द्रवित हो गए। भगवान ने इतना स्नेह दिया विदुर को, है अपनी लीला संवरण काल में विदुर का स्मरण किया, इस बात से भी उनका चित्त अतिशय विह्वल हो गया, और वे श्री विदुर जी महाराज गंगा तट पर विराजमान महर्षि मैत्रेय के चरणों में पहुंचे। द्वारिद्यु नद्या ऋषभ कुरुणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धः पप्रच्छ सौशील्य गुणा वितृप्ता। अगाध बोध वाले महर्षि मैत्रेय के चरणों में पहुंचे हैं। यहां वक्ता और श्रोता दोनों का विशेषण है। श्रोता का विशेषण क्या है? जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु हैं विदुर जी, उनका विशेषण है अच्युत भाव शुद्धा। और वक्ता कौन है? मैत्रेय जी, उनका विशेषण है शौशील्य गुणाभितृप्ता। श्री मैत्रेय महर्षि के शौशील्य गुण से अभितृप्त होकर के अच्युत भाव शुद्ध श्री विदुर जी ने पूछा। चित्त की शुद्धि, भाव की शुद्धि अच्युत भाव के प्रकट होने पर ही होती। भगवत भाव जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी। कोई कामना भगवान के अतिरिक्त कोई कामना चित्त में जब तक है तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती। वस्तुतः भगवत प्रेम का अधिकारी वही है जो अच्युत भाव शुद्ध हो। मुमुक्षु का लक्षण है अच्युत भाव शुद्ध, वक्ता का लक्षण है सौशील्य गुणाभितृप्ता। वक्ता का मुख्य गुण है सौशील्य गुण, सुशीलता का गुण, शील गुण। शील गुण होगा तभी क्षोभ रहित होकर के समाधान करेगा, और शील रहित तो होगा तो भले ही ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन उसके ज्ञान और विद्या का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। नेक नेक सी बात पर क्रोध कर दिया, बिगड़ गया, क्षोभ हो गया, समाधान क्या करेगा? बड़े शीलवान हैं महर्षि मैत्रेय, क्रोध नहीं करते हैं, क्षोभ रहित हैं। आपके चरणों में प्रणाम करके पूछा विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे भगवान, आप कृपा करके यह बतावें कि सारे संसार के जीव सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त हैं। सुख चाहिए, सुख की आशा से ही कर्म में उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन आश्चर्य तो यह है, सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होने के बाद भी कर्म के परिणाम में उन्हें दुख मिलता है। सुख का संकल्प लेकर कर्म में प्रवृत्त हुए तो सुख मिलना चाहिए, लेकिन सुख नहीं मिला, बदले में उन्हें दुख मिलता है। तो जब दुख मिला तब उन्हें समझ लेना चाहिए कि जब संसार के एक कर्म में प्रवृत्ति सुख का संकल्प लेकर हुई थी और परिणाम में दुख मिला, तो अब संसार के जितने कर्म हैं उनमें प्रवृत्ति और उसका परिणाम दुख ही होगा। भले ही सुख के कारण प्रवृत्ति हो लेकिन परिणाम में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ करके समस्त संसार के कर्मों से उपरति हो जाना चाहिए, उसकी वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन आश्चर्य यह है कि दुख मिलने के बाद भी वह कर्म के जाल में फंसता ही चला जाता है और अधिक दुखों का संग्रह करता है। इसका क्या कारण है? अध्ययन किया सुख मिलेगा, बहुत पैसा खर्च किया अच्छी नौकरी नहीं मिली दुख हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई तो फिर होगा कि अरे भाई पैसा तो कमाने लग गए, बिना विवाह के सुख कहां मिलेगा। अब विवाह के सोचा कि विवाह से सुख हो जाए, विवाह रूप कर्म में प्रवृत्ति हुई, उससे भी दुख बढ़ गया। कितना दुख बढ़ गया? बहुत दुख बढ़ गया। हमने सुना है कि कोई नववधु रुदन कर रही थी, बहुत लोगों ने समझाया, प्रथम विदाई का अवसर था, बहुत रुदन कर रही थी। जब नहीं उसने रोना बंद किया तो पति ने समझाया कि भाई अब इतना क्यों रो रही हो, रोना बंद करो। उसने कहा हमको तो आज ही रोना है, बाकी तो अब रोने का काम आपको ही करना है, इसलिए अब आज हमको आखिरी दिन रोना है तो हमको रो लेने दो, क्यों रोकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख का संकल्प लेकर विवाह कर्म में प्रवृत्त हुआ और जीवन भर का रोना, विवाह के बाद सुख नहीं, रोना, संतान के लिए रोना, और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई की, फिर उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख से सुखी होना, रोना ही रोना है। एक कोई क्रिया संसार की ऐसी नहीं है जिसका परिणाम दुख न हो, समस्त क्रियाओं का एक ही परिणाम है दुख। माताएं भोजन बनाती हैं तो एक चावल को दबाकर देखती हैं, तो एक चावल को दबाकर देखने से उन्हें पता चल जाता है कि सारी हंडी के चावल पक गए। ऐसे ही एक कर्म को के परिणाम को देखकर समस्त संसार के कर्म दुखप्रद हैं ऐसा विचार करके उनसे निराश होकर के भजन में लग जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता, फिर भी वो संसार के कर्मों में ही लगा रहता है। इसका क्या कारण है आप कृपा करके बतावें। इन दुख रूप संसार के कर्मों से उपरति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। इस प्रश्न को करने के बाद विदुर जी महाराज ने स्वयं ही इसका समाधान किया। आप लोग कहेंगे कि जब समाधान स्वयं ही किया तो प्रश्न करने की क्या आवश्यकता थी, जब स्वयं ही समाधान जानते हैं तो प्रश्न करने की क्या आवश्यकता थी। प्रश्न करने की दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति तो यह है कि हमें हमारे भीतर प्रश्न उठा है, उत्तर उसका हम नहीं जानते, तो हम संतों के पास जाएं और अपनी जिज्ञासा को उनके सामने विनम्र शब्दों में प्रस्तुत करें और फिर उनके समाधान को हम प्राप्त करें। एक तो ये पद्धति है। दूसरी पद्धति ये है कि प्रश्न भी हमारे भीतर उठा है और उस प्रश्न का समाधान भी हम जानते हैं, तो हम पहले अपने प्रश्न को महापुरुषों के सामने रखें, फिर अपने समाधान को भी उनके सामने रखें। यदि वे महापुरुष कह दें कि हां तुम्हारा प्रश्न भी ठीक और तुम्हारे प्रश्न का समाधान भी ठीक, तब हम विश्वास कर लें कि बस ठीक है। जब तक कोई महापुरुष उस पर मुहर न लगा दे, कोई अनुभवी महात्मा मुहर न लगा दे, तब तक विश्वास न करे कि हमारी जानकारी ठीक है। जानकारी ठीक है लेकिन कोई महात्मा कह दे कि हां ये ठीक है, तब विश्वास पूर्वक उसमें दृढ़ हो जाए। तो श्री विदुर जी महाराज कहते ये तो हमारे भीतर का एक प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान हमारे चित्त में जो प्रकट हुआ है वो ये है, कस्त्रप्नुया तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु भस्सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं चिनत्ति। हे भगवान, हमारे विचार से तो इन दुखप्रद कर्मों से उपरति वैराग्य संसार के मनुष्यों को इसलिए नहीं होता क्योंकि वे भगवान की कथा नहीं सुनते। क्योंकि मेरे विचार से भगवान की कथा की ऐसी महिमा है कि यह जो कथा बड़े बड़े महात्मा जिनका वर्णन करते हैं, यह कथा कान की नाड़ी से, यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य याता, कान की नाड़ी से, और जब हृदय में यह कथा प्रवेश करती है तो हृदय में ही संसार के प्रति रति बनी हुई है। भव प्रदान, संसार में डालने वाली वस्तु क्या है? गेह रतिम, शरीर और संसार के प्रति जो रति है यही हमें संसार चक्र में डालने वाली है, इसी ने हमको संसार चक्र में डाल रखा है। और यह देह गेह की प्रति रति जब तक चित्त में बनी भई है तब तक संसार के दुखप्रद कर्मों से उपरति होना संभव नहीं है। तो ये भीतर चित्त में बसी हुई शरीर और संसार के प्रति रति ये कैसे समाप्त हो? तो विदुर जी महाराज कहते हैं जब कथा कान के माध्यम से हृदय में जाती है तो देह गेह कुटुंब संसार के प्रति जो रति है, आसक्ति है, उस आसक्ति को छिनत्ती, उसको छेदन कर देती है, उसको छिन्न भिन्न कर देती है। संसार बाहर नहीं है, संसार तो भीतर है। वस्तुतः बाहर तो सब परमात्मा ही है, भीतर संसार बसा हुआ है इसलिए बाहर संसार दिख रहा है। भीतर भगवान विराजमान हो जाए, भगवत रति भीतर विराजमान हो जाए तो बाहर संसार नहीं रह जाएगा। देह और गेह इनके प्रति रति क्यों बनी भई है? इनके प्रति रति इसलिए बनी भई है क्योंकि शरीर और संसार इन दोनों के यथार्थ स्वरूप का बोध हमें नहीं है इसलिए रति बनी भई है। और भगवान की कथा सुनने से इनके यथार्थता का बोध हो जाता है, भोगों की असारता, संसार की दुख रूपता, संसार की क्षणभंगुरता, शरीर की नश्वरता, इन सब का जब बोध हो जाता है और भगवान के दिव्य करुणामय स्वभाव का बोध जब होता है तो अपने आप भगवान में रति बढ़ती चली जाती है और शरीर संसार के प्रति उदासीनता बढ़ती चली जाती है। और ज्यों ज्यों शरीर संसार के प्रति उदासीनता बढ़ती है त्यों त्यों भगवान का भजन बढ़ने लग जाता है। ये लाभ कथा श्रवण करने से मिलता है। तो भगवान, हम तो यही समझते हैं कि शरीर और संसार के प्रति तब तक आसक्ति समाप्त नहीं हो सकती चाहे जो कुछ साधन करता रहे जब तक वह आपकी मंगलमयी कथा नहीं सुनता है। क्या यह समाधान उचित है? मैत्री जी ने मुस्कुराकर मानो समाधान कर दिया, बोले बिल्कुल ठीक, आपका प्रश्न भी उचित और आपका समाधान भी सर्वश्रेष्ठ है। तब तो आपने प्रसन्न होकर कहा जब हमारा समाधान श्रेष्ठ है तो भगवान इतनी कृपा और कर दीजिए, हमारे हृदय में जो देह गेह के प्रति रति बनी है उसे आप कथा सुना करके छिन्न भिन्न कर दीजिए। तदस्य कौशारव शरम दातु हरेक कथा मेव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप कृपा करके कथा न सुनावे। कथाम एव कथा सुसारम, कथाओं में जो कथा का सार है वो सुनावे। इसका तात्पर्य है कि भागवत कथा नहीं है, भागवत कथा सार है, क्योंकि अन्य पुराणों में तीर्थाटन, व्रत, जप, तप, नियम, इनकी महिमा का वर्णन है और भागवत धर्म उन सबका सार है। तो आप कृपा करके भागवत धर्म के सार सर्वस्व वाली कथाएं सुनाइए, अर्थात कर्म, ज्ञान, योग, तीर्थाटन, व्रत, उपवास आदि में भटकाने वाली कथाएं न सुनाइए। केवल भगवान का अनुराग बढ़े, भगवान का संबंध दृढ़ हो, ऐसी कथा आप कृपा करके सुनाइए।